Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tatsa Tav Tattvam Najanami Kidrishosi Maheshwara यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यो वशौ स्वहं यजामि ॐ शान्ति। अथर्ववेद से संबंधित मुंडक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद में शौनक द्वारा उस तत्व के संबंध में पूछे जाने पर कि जिसको जान लेने पर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिस एक को जानकर सब कुछ जाना जाता है, अंगिरस उत्तर देते हैं कि दो विद्याएं हैं, अपरा और परा। उसमें दोनों का संक्षेप में उन्होंने वर्णन किया। अपरा विद्या विज्ञान या विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथ्य तक पहुंचना, और पराविद्या संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सत्य तक पहुंचना, और अंतम उपलब्धि में तथ्य और सत्य दोनों एक ही हैं। मैटर की दृष्टि से, पदार्थ की दृष्टि से खोज करेंगे तो तथ्य तक पहुंचेंगे, चेतन की दृष्टि से खोज करेंगे तो सत्य तक पहुंचेंगे। असल में दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रारंभ होता है इस विद्या का कि वह एक था, उस एक ने संकल्प किया मैं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्या। असल में वो जो एक है वो ही बहुत हुआ। जो बहुत का अर्थ है अनेकता, अनेकता के रूप में, विभिन्नता के रूप में, अलग अलग इकाइयों के रूप में जो हमें नजर आ रहा है वो वही है जो एक था। एक का ही संकल्प है कि मैं बहुत हो जाऊं, और फिर वही बहुत हो गया। उस एक के पास बहुत होने के लिए स्वाय अपने और कोई वस्तु थी नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं थी जिसका सहारा लेकर वो बहुत हुआ हो। क्योंकि और कुछ है ही नहीं, वही है, इसलिए वो एक में रहे या अनेकों में विभक्त हो जाए, जिसकी दृष्टि इस आधारभूत तथ्य पर है वो सत्य से कभी अलग नहीं होगा। हर तथ्य के नीचे सत्य है, और हर सत्य तथ्य के रूप में नजर आता है। जब भी सत्य को कोई नाम देंगे तो वो तथ्य बन जाता है। ये एक सिद्धांत, इसलिए जब कोई नाम रूप नहीं होगा तो आप सत्य पर हैं। यूं ही नाम रूप नाम होगा तो रूप होगा ही कोई ना कोई। जहां नाम और रूप आए वहां सत तत् बन जाता है, अर्थात जिसको हम चेतन कहते थे वो जड़ के रूप में नजर आता है। होता वही है लेकिन नजर आता है ऐसा कि वो जड़ बन गया। इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए साधक जब अपनी साधना में अग्रसर होता है तो वो सुगमता से तत्व के नजदीक पहुंच जाता है। एक और अनेक, परा और अपरा, जड़ और चेतन, ये विभिन्न विभिन्न नाम है। इसी को ही कभी नित्य अनित्य के रूप में कह देते हैं, अविनाशी और नाशवान के रूप में भी इन्हीं को ही कह देते हैं। इसी बात को समझाने के लिए कि किसी तरह का कोई भ्रम ना रह जाए, अंगिरस शौनक जी को इन दोनों विद्याओं की बात करते हैं। इसको अपने लिए साधक ने ध्यान में रखना हो तो आप ऐसा समझ लो कि वह विद्या या वह ज्ञान जिसको प्राप्त करके फिर हम उस पर अमल करें, उसको अपने जीवन में उतारें और उसका फल कुछ देर बाद मिले, उसको अपरा विद्या कहते हैं। हमने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, अभ्यास किया, जीवन में उतारा, लेकिन उसका जो भी फल है, जो भी परिणाम है, वो समय पाकर कुछ देर के बाद मिलेगा। ऐसी विद्या को अपरा विद्या कहते हैं, जिसको पढ़े तो हम अब और करें भी अब, जैसे हवन कैसे करना है वो हमने जान लिया और वो करें भी अब, लेकिन हवन का फल कब मिलेगा वो समय पर अपने आप मिलेगा, वो तुरंत नहीं होगा। तो ऐसी विद्या को अपरा कह लेते। परा विद्या वो है जिसका तुरंत फल, ज्ञान हुआ तो उसी समय हुआ, ऐसा नहीं है कि फिर ज्ञान का अगर अब हो गया और ब्रह्म बनेंगे आप कभी दो साल बाद, ऐसा नहीं। अगर अहम ब्रह्मोस्मि, मैं चेतन तत्व हूं, ये अनुभूति हो गई तो फिर उसी समय हो गई, इसमें देर वाली बात नहीं होती। और जिसको ये अनुभूति हो जाती है फिर उसमें परा और अपरा का कोई भेद नहीं रहता। एक की नजर हर समय चेतन तत्व पर रहती है, अर्थात विभिन्न प्राणियों के अंदर चल रही जीवन धारा या ऊर्जा पर नजर रहती, शक्ति पर नजर रहती। जैसे आधुनिक युग में उदाहरण देते हैं कि एक की नजर विद्युत पर रहती है, बिजली पर रहती, एक की नजर बल्ब पर रहती। बल्बों में विभिन्नता है, कोई काले लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई सफेद रंग का है, कोई 10 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई 40 का है, ये सब बल्बों में। लेकिन उन सब के अंदर शक्ति के रूप में विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें कोई फर्क नहीं, वो वैसे की वैसे ही है। बल्ब फ्यूज भी होते रहेंगे, टूटते भी रहेंगे, लेकिन उनके फ्यूज होने ना होने से बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों की त्यों ही रहे। घड़े बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, लेकिन मट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मट्टी ज्यों की त्यों रहेगी। तो एक की नजर मूल तत्व पर रहती है और दूसरे की मूल तत्व के विवर्तों पर, मूल तत्व से जो कुछ बना क्यों, ये मूल तत्व का स्वभाव है, ये चेतन का स्वभाव है, कि वो अपने आप को विविध रूपों में दिखलाता रहता। अगर हम ये कहें कि वो बना ही क्यों अलग रूपों में, अगर वह भिन्नता में परेशानी है, अगर वह भिन्नता में दुख है, जैसा कि सब कहते हैं कि वह भिन्नता में दुख है एकत्व में सुख है, तो अगर वह भिन्नता में दुख है तो वो जो एक था उसने संकल्प ही क्यों किया कि मैं बहुत बन जाऊं। ये वह भिन्नता किसी और की बनाई हुई नहीं है, वही तो विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रतिभासित कर रहा है, दिखला रहा है। उसी का ही संकल्प था कि एको हम बहुत स्याम, मैं एक हूं तेरा ज्यादा हो, तो वो दुखी होने के लिए तो ज्यादा हुआ नहीं था, और दुख नाम की कोई चीज उसके पास है भी नहीं जो हम कहें कि वो दुखी होने के लिए हुआ। तो क्यों हुआ, ये उसका स्वभाव है, और स्वभाव में कभी भी दुख नहीं होता। स्वभाव में अगर हम दुख की कल्पना करते हैं तो हमने स्वभाव को ठीक से समझा नहीं, इसको अज्ञान में उसका प्रतिबिंब या आभास कहते। जैसे आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब का स्वभाव है कि वो उल्टा दिखलाई देता है, जैसा है उसके विपरीत दिखलाई देगा। मुंह मेरा होगा उत्तर की ओर, लेकिन प्रतिबिंब में देखेंगे तो वो मुंह पश्चिम की ओर होगा, इसलिए दर्पण में देखने पर हमेशा वो उल्टा दिखलाई देगा। हम जब शीशे को देखते हैं तो लगता नहीं है हमें कि उल्टा है। शीशे के सामने किसी पुस्तक का पन्ना खोल के रखना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि शीशे में जो दिखलाई देता है वो उल्टा। ऐसे ही वो सत्य चित आनंद जब दिखलाई देता है अपनी ही चमक में, अर्थात अंतःकरण रूपी दर्पण में आप ऐसा कर लो तो सत्य असत्य जैसा दिखलाई देता है, चित जड़ जैसा दिखलाई देता है, और आनंद दुख जैसा दिखलाई देता है। होता नहीं, क्योंकि जब कभी भी प्रतिबिंब को देखेंगे तो वो लगता है कि उल्टा। जिसको शीशा देखने की कला आ गई वो उसके लिए उल्टा नहीं। शीशे में भी लोग पुस्तक पढ़ लेते, जिसने जरा सा अभ्यास किया उसको वो पुस्तक को पढ़ लेगा, आम आदमी के लिए वो मुश्किल। तो इसलिए परा और अपरा विद्या, इन दोनों में कोई किसी तरह से तात्विक दृष्टि से अंतर नहीं है, केवल एक दृष्टिकोण का फर्क है, हमारा उस बात को समझने का फर्क। इकबाल बड़े अच्छे फिलॉसफर, दार्शनिक, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उर्दू में उन्होंने बहुत अच्छी कुछ दर्शन शास्त्र से संबंधित बातें भी कही। एक जगह पर वो लिखते हैं, चमक तेरी आया आतश में, बिजली में, शरारे में, झलक तेरी हवीदा चांद में, सूरज में, तारे में, बुलंदी आसमानों पर जमीनों में तेरी पस्ती, रवानी बहर में उफ्तादगी तेरी किनारों में। एक ही तत्व को बतला रहे हैं कि चमक तेरी आया, तेरी ही चमक जाहिर है बिजली में, आग में और शोलों में। आग की चंगारियां हो, आग हो, बिजली चमक रही हो, उसके अंदर जो तपश है, जो गर्मी, दाहकता और प्रकाशिकता है वो एक ही, और वो उस मूल तत्व की। और वही चांद में, सूरज में, तारों में, चांद में भी रोशनी उसी की है लेकिन वहां ठंडक पहुंचाएगी, लगता है हमें चांद को देखकर ठंडक महसूस हो रही है, सूरज को देखकर गर्मी महसूस हो रही है। उपाधियों के भेद से एक ही तत्व अलग अलग तरह के परिणाम देता हुआ मालूम होता है। वास्तविकता यह है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऊंचाई में और गहराई में कोई अंतर नहीं होता। ऊंचाई कहां से शुरू हुई, गहराई कहां से शुरू हुई, इन दोनों के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं। जैसे कल भी पानी और पृथ्वी की बात कर रहे थे कि दोनों तत्व कौन कहां पर खत्म हुआ और किसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी कोई सीमा नहीं है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं, एक ही तत्व है, वही पृथ्वी के रूप में दिखलाई देता है और वही पानी के रूप में भी दिखलाई देता है। तत्व में कोई फर्क नहीं है, ये बात उन्होंने इन दो विद्याओं के नाम लेकर ये बात समझा दी। अब उस बात को आगे, उस तत्व की ओर आगे बढ़ते हुए ऋषि उनको कह रहे हैं, अब ये छठा मंत्र है, यत् तद् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तत्पाणिपादम् नित्यम् विभुम् सर्वगतम् सुसूक्ष्मम् तदव्ययम् यत् भूत योनिम् परिपश्यन्ति धीरा। अब वो तत्व का वर्णन शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, यहां तक पहुंचना। ये बात भी आप सब ठीक तरह से जानते हैं कि जिस तत्व या जिस ब्रह्म का वर्णन है उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और उसे समझने के लिए सिवाय शब्दों के और कोई दूसरा माध्यम भी नहीं। समझा भी वो शब्दों के माध्यम से ही जाएगा, बस फर्क सिर्फ यही रह जाता है कि जब शब्द हमारे सामने आते तो शब्द के अर्थों पर, अर्थ का मतलब है शब्द के शब्दार्थ भी होते हैं और शब्द के वाच्यार्थ भी होते हैं, शब्द के लक्ष्यार्थ भी होते हैं और शब्द के सांप्रदायक अर्थ भी होते हैं। अपनी अपनी संप्रदाय में वही शब्द अलग अलग अर्थ रखते, इसलिए प्रारंभिक साधक को जरूरी होता है कि वो किसी एक शब्द के वही एक अर्थ लेकर अपना चिंतन शुरू करे। बाद में वो सब एक ही है, ये दूसरी बात। जिसके लिए सब एक ही है उसके लिए ये शब्द भी नहीं है, उसके लिए ग्रंथ भी नहीं। जिसके लिए एक हो गया उसके लिए परा अपरा की कोई बात नहीं रह जाती। लेकिन जो अभी इसमें आगे बढ़ना है, जिसने असल में जो भ्रम होता है, जो भ्रांति होती है, जहां पर थोड़ी गलती हो जाती है, अब अगर वल्लभाचार्य जी लीला शब्द का प्रयोग करेंगे तो उनका कुछ अर्थ और है उस संदर्भ, जिसे हम शंकराचार्य जी माया कहेंगे वो उसके लिए लीला शब्द का प्रयोग करते। अब दोनों को देखने में, दोनों के अर्थ सुनने में बिल्कुल अलग अलग लगेगा, ऐसा नहीं लगता कि लीला और माया एक ही। उसी को ही स्वभाव भी कह देंगे, जिसको माया कहा वो स्वभाव है ईश्वर का, वो लीला है ईश्वर की, वो ऐसे ऐसे एक ही शब्द के लिए। फिर वो आम व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा कि स्वभाव भी वही है, माया भी वही है, लीला भी वही है, संकल्प भी वही है, करुणा भी वही है, भगवान का क्यों जन्म हुआ, इस बात को लेके इतनी आपस में, जिसको हम अवतारवाद कहें, तो इतनी उसके संबंध में कोई कहेगा करुणा मूलक है, दूसरा कहेगा स्वभाव, ये कहते हैं प्रेम वितरण के लिए, कहते माया वो जन्म हुआ है। अब माया, प्रेम, करुणा, लीला, अंतम अर्थ में सब एक है, ये इनके अर्थों में सांप्रदायक भेद है। जब तक इस बात को हम ठीक से ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक सत्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तथ्यों में भटक कर रह जाते, फैक्ट्स में ही हमारी मत्थापच्ची होती रहती है, ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाते। तो शब्द तो वही रहेंगे लेकिन अर्थ कौन कैसे लेता है ये बात उसमें अलग हो जाएगी, क्योंकि हर शब्द किसी विशेष मकसद की हो। देखो वैसे तो जो उपनिषदों में जिसकी रुचि है, वो इसको जानता है बड़ी अच्छी तरह से कि दो ही चीजें हैं दुनिया में, एक तत्व और दूसरे तत्व। एक ब्रह्म है और दूसरे वो शब्द हैं जो ब्रह्म ही सब कुछ बना। तो जो जो कुछ वो बना उसको अभिव्यक्त करने के लिए शब्द हैं। हर चीज के लिए कोई ना कोई शब्द है, हर चीज के लिए कोई ना कोई शब्द। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिए कोई ना कोई शब्द ना। अगर वो एक से बहुत हो गया बहुश्याम, तो वो कितना भी बहुत हो जाए, जितनी चीजें बनी उतने शब्द बने। वो जो एक है तत्व जिसको हम कहते, जिससे सब बना, उस एक का जो समकक्ष है, जो उसको बतलाएं, उसको ओम कहते, आ ऊ और म। वो एक जितनी भी चीजों में बदलता जाएगा, आ ऊ और म उतने ही शब्दों में बदलते चले जाएंगे, उतने ही शब्द बनते चले जाएंगे। सभी शब्द अंत में अ ऊ म में इनका विलय हो जाएगा और सभी दिखलाई देने वाली चीजों का ब्रह्म में विलय। अंतम बात जब, क्योंकि शब्द कितने भी बने, अगर ये बात ध्यान में रहे कि ओम से बाहर कोई शब्द नहीं है और है भी नहीं, असल में शब्दों का प्रयोग करते समय हम बहुत दूर निकल जाते, मूल से दूर हो गए, आओ मां से दूर हो गए। हर शब्द, कोई भी शब्द लो, वो कहीं ना कहीं घुमा के आ में ऊ में मां में आ जाए। और जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो या स्वप्न में उसका विलय, जागृत में है, सुषुप्ति में। इसलिए जिसका चिंतन ऐसा है उसके लिए ये शब्द कोई भ्रम में नहीं डालेंगे उसे। उसको माया कह लो या लीला कह लो, स्वभाव कह लो या करुणा कह लो, हर शब्द माया लीला करुणा इनका विलय ओम में जाएंगे भाई। और ओम अंततः आप ऐसा समझ लो कि जैसे ये मेज है, मेज के ऊपर हम चीजें रखते चले जाए, एक फूल, एक थाली रख दो, कटोरी रख दो, ग्लास रखो, ऊपर तक अंबार लगा दो। तो इन सब चीजों को नाम है इन सब के, उनको शब्द कहते। ऐसे ही सबके नीचे ओम रख दो, ओम के ऊपर हर इधर चीजें हैं, इधर शब्द। इन चीजों को आप एक का उसमें विलय करो, करते करते ब्रह्म तक पहुंचोगे, शब्दों का उनमें करते चले जाओ तो ओम तक पहुंचोगे। अंत में बात कह दी कि जो ओम है वही ब्रह्म, वही शिशु वेद। ऐसा भी जिसके चिंतन में हर समय बना रहता है वो भी इन बातों से भटकेगा। फिर उसके लिए ये मजा, जैसे मजा लेते हैं ना कोई लोग, क्यों इतने शब्द हैं, क्यों इतनी बातें हैं, क्योंकि अकेला बैठे बैठा ब्रह्म भी जो आपस में उसने सोचा कि मैं बहुत हो जाऊं, तो आनंद के लिए। समुद्र में लहरें उठी इसलिए कि समुद्र में स्टेग्नेंसी ना आ जाए। समुद्र में खड़े रहने से जो थोड़ी बहुत बदबू पैदा होती है जल में, वो ना हो इसलिए हिलता रहे। इसलिए वो एक से बहुत बनता है ताकि वो हमेशा उसकी ताजगी बनी रहे, सत्य चित आनंद की ताजगी बनी रहे। जब कभी भी हम इसके नजदीक पहुंचे तो वो हर समय हमें ऐसा ही लगे जैसे हर समय नया, हर समय नया, कभी भी उससे हम उभे नहीं। तो इसलिए जितने भी अब शब्द कहे जाएंगे, शब्द सुनने में नकारात्मक हैं और अनुभव में सकारात्मक। पहला यहां शब्द उन्होंने ये दिया, यत् तत् अदृश्यम। अब उस तत्व का अनुरूपण कर रहे हैं कि वो अदृश्य। मोटे तौर पर अदृश्य का मतलब होता है जो दिखलाई ना दे, इनविजिबल, इस विजन में नहीं आ रहा, जो दिखलाई ना दे। अब कभी अपने आप पूरी तन्मयता से उस संबंध में विचार करना जो दिखलाई नहीं देता। स्वयं जब तक नहीं आप इधर को अपना ध्यान लगाएंगे तब तक जो दिखलाई नहीं देता, ये एक शब्द। अब क्या है जो दिखलाई नहीं देता? यहां वो ये कह रहे हैं कि वो आधार है, वो मूल है, वो तत्व है। तत्व कैसा है कि वो दिखलाई नहीं देता। अब जो दिखलाई नहीं देता उसके बारे में ना तो कुछ सोचा जा सकता है, अगर सोचेंगे तो कल्पनाएं बहुत बहुत तरह की होंगी कि जो दिखलाई नहीं देता तो वो किस तरह का होगा। जिस तरह का भी आप सोचोगे वो दिखलाई दे जाएगा, और वो जो दिखलाई दे गया तो ब्रह्म नहीं। आप स्वयं बैठ के थोड़ा इस पर चिंतन करो कि जो दिखलाई नहीं देता, तो मन में यही तो आएगा ना कि जो दिखलाई नहीं देता तो वो कैसा होगा। जब ये बात मन में आएगी कि वो कैसा होगा, तो फिर आप कुछ ना कुछ कल्पना करोगे कि वो ऐसा होगा। बस जो ही वो कल्पना में आया तो आप तथ्य से दूर हट गए। इसी बात को आप थोड़ा सा और आसान करके इस बात को समझो, क्योंकि मुख्य रूप से इसी की व्याख्या आने वाले और जो दो चार दिन हैं हमारे पास, इसी बात को लेकर ही हमने चर्चा करनी। जो देखने वाला है, जिसको दिखलाई देगा उसको दृष्टा कहते हैं। जो भी देखने वाला होगा उसी को तो दृष्टा कहते हैं ना। और जो कुछ भी दिखलाई देगा वो दृश्य होगा। और जो जो कुछ भी दृश्य होगा वो परिवर्तनशील है, नाशवान है, सापेक्ष है, अर्थात दृष्टा के बिना दृश्य नहीं होगा। लेकिन दृष्टा दृश्य के बिना भी रहेगा। अच्छा, अगर दृष्टा दृश्य के बिना भी रहेगा और दृष्टा अगर अपने आप को ही देखना चाहे, थोड़ा सा आप विचार करो कि दृष्टा अपने आप को देखना चाहता है, इसको और आसान और सीधी भाषा में आप कहो कि दृष्टा दृश्य बनना चाहता है। देखा वही जाएगा जो दृश्य हो। जो भी दिखलाई देगा वो दृश्य होगा, ये तो अटल नियम है, इसको तो कोई आप इनकार कर नहीं सकते, ना ही इसका किसी तरह से आप विरोध कर सकते। जब हम ये कहते हैं या जब कभी आप सोचोगे कि दृष्टा स्वयं को देखे, इसका अर्थ हुआ कि दृष्टा दृश्य बनना चाहता है। अब प्रश्न होगा कि अगर वो दृश्य बनना चाहता है तो फिर उसका दृष्टा कौन होगा? दृश्य का दृष्टा चाहिए कोई ना कोई। कोई भी दृश्य हो उसका दृष्टा होता, और दृष्टा अपने आप को देखना चाहे तो इसका अर्थ है दृष्टा अपने आप को दृश्य में बदलना चाहता है। अगर वो दृष्टा ही दृश्य में अपने आप को बदल रहा है तो फिर दृष्टा कौन रह जाएगा? अब देखो, कोई ना कोई तो इस बात को समझते होंगे आप में से, नहीं तो अदृश्य शब्द को समझा पाना कि जब तक थोड़ी बहुत साधना ना हो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। और खाली ये कह देना जो दिखलाई ना दे वो ब्रह्म होता है, ये बात नहीं। कभी हो सकता है कि हो भी और दिखलाई ना दे। अगर ब्रह्म ही दिखलाई नहीं देगा तो रह क्या जाएगा? या अदृश्य, इसी में जितने भी और शब्द हैं इसी में ही समा जाएंगे, आगे बहुत बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ओम तत्सत, कल फिर इसकी बात।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।